नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुकृतातं तपोनिधि तो कल एक राजा की कथा सुनाई थी। अब उस राजा के भाइयों ने विद्रोह किया सिखाने में आकर के, पुरोहितों ने आभिचारी की यज्ञ किया और राजा ने अपने को दोषी माना कि मेरे पास इतना राज्य है तभी तो ये सारी बात हुई। राजा का नाम था खनित्र, वो जंगल चला गया तपस्या करने लगा। उसका एक पुत्र था, उसका नाम था क्षुप, वो शासन करने लगा। मार्कंडेय जी आगे कहते हैं कि राजा खनित्र के पुत्र क्षुप ने राज्य की प्राप्ति के बाद पिता के समान पूर्ण धर्म का आचरण किया। ये बड़े दानशील थे, अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया। उनका इतना निष्पक्ष व्यवहार था कि शत्रु और मित्र दोनों को समान भाव से देखा। एक दिन क्षुप नाम के राजा ने अपने राज सिंहासन पर बैठे हुए थे तो उन्होंने सूतों के द्वारा कुछ बात सुनी। सूतों ने कहा, सूत बंदीजन ये, उन्होंने कहा कि महाराज पूर्व काल में आप ही के नाम वाले एक और राजा हुए थे, उनका नाम भी क्षुप था। वो ब्रह्मा जी के बेटा थे। आप खनित्र के बेटा हो, वो ब्रह्मा जी के बेटा था। उनका चरित्र जैसा था वैसा ही आपका लग रहा है। और कितने आश्चर्य की बात है कि उनका और आपका नाम भी एक है। वो क्षुप नाम के राजा थे, वो कभी गाय और ब्राह्मण इन दो से कोई कर नहीं लेते थे। अब ये गाय का क्या कर, गाय के ऊपर क्या टैक्स, ब्राह्मणों से तो क्या पता ले ले, गाय का क्या टैक्स, पर वो नहीं लेते थे। बहुत यज्ञ किए उन्होंने भी। तो ये क्षुप राजा बोले कि भाई वो बड़े पुरुष थे, मैं उनका क्या अनुसरण कर सकता हूं, फिर भी अपने से बड़ों के जो आचरण है वो मनुष्य को जरूर स्वीकार करना चाहिए। इस काम में अपने को हताश नहीं मानना चाहिए। यदि कोई भी एक अच्छा आचरण करने वाला होता है तो हमारे मन में ये होना चाहिए कि अपने भी वैसा कर सकते हैं। इस भावना के साथ मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जो पूर्व में महाराज क्षुप हो चुके हैं मैं उनका अनुसरण करूंगा। खेती का अभाव हो जाएगा तो कई प्रकार के यज्ञ करके उस अभाव को दूर करूंगा। मेरी ये प्रतिज्ञा संपूर्ण भूमंडल के लिए है और आज के पहले जो मैंने ब्राह्मणों से कर लिया है वो सब मैं वापिस उनको लौटा दूंगा। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आज के बाद कोई टैक्स न लिया जाए, कर माने टैक्स, टैक्स न लिया जाए वो बात तो समझ में आती है, पर लिया हुआ भी लौटा दूंगा ये बात सबको अत्यंत आश्चर्य में डुबाने वाली लगी और लौटा भी दिया। ऐसे उत्तम राजा के एक वीर नाम का उत्तम पुत्र हुआ और उसके एक विवंश नाम का पुत्र हुआ, माने क्षुप का पौत्र, बड़ा बलवान। अब ये खास यहां बात कहने की है, विवंश के राज्य शासन में आबादी खूब बढ़ गई, समूची पृथ्वी मनुष्यों से भर गई। इतने मनुष्य जब हो गए तो समय पर खूब अच्छी वर्षा होने लगी, पृथ्वी पर खूब खेती होने लगी, खेतों में खूब धान पैदा होने लगा, वृक्षों के जो फल थे वे बड़े रसपूर्ण थे और ऐसा उन वृक्षों के फलों में रस कि मनुष्यों के लिए बड़े पुष्टिकारक, परंतु किसी मनुष्य में किसी प्रकार का कोई उन्माद नहीं था। लोगों के पास ज्यादा आबादी होने से धन का संग्रह खूब हुआ, परंतु उस धन को लेकर कभी घमंड नहीं हुआ। ऐसे विवंश के प्रताप से शत्रु सदा भयभीत रहते थे, प्रजा बड़ी स्वस्थ थी, मित्र लोग भली भांति पूजित हो प्रसन्नता प्राप्त करता था। राजा विवंश बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान करके अंत में प्रजा की रक्षा के लिए संग्राम में मृत्यु प्राप्त करके इंद्रलोक में चले गए। ऐसे विवंश का एक पुत्र था खनिनेत्र, वो तो था खनित्र, यह खनिनेत्र बड़ा पराक्रमी। उसके यज्ञों में गंधर्व गण स्वयं आश्चर्य के साथ वहां आते थे और वो यह कहा करते थे कि खनिनेत्र के समान दूसरा राजा इस पृथ्वी पर नहीं होगा, क्योंकि 10,000 यज्ञ पूर्ण करके समुद्र सहित सारी पृथ्वी उन्होंने दान दे दी। महात्मा ब्राह्मणों को समूची पृथ्वी दान देने से उन्होंने तपस्या से द्रव्य संग्रह किया और फिर ब्राह्मणों को द्रव्य देकर पृथ्वी को खरीद लिया। राजा खनिनेत्र ने 67,667 यज्ञ किए, जाने 67 से क्या प्रेम था, 67,667 और सब में प्रचुर दक्षिणा दी। अब उस राजा के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वे पापनाशनी गोमती नदी के किनारे गए और वहां वन मन वाणी और शरीर को संयम में रखकर घोर तपस्या करने लगे। संतान के लिए उन्होंने इंद्र का स्तवन किया, उनके स्तोत्र तपस्या और भक्ति से संतुष्ट होकर इंद्र ने प्रकट होकर राजा से कहा, राजन तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हुआ हूं, मांगो तुम क्या वरदान मांगते हो। राजा बोले, महाराज मेरे कोई पुत्र नहीं है और किसी के पुत्र न होना उसके दुर्भाग्य का सूचक होता है, अतः आपकी कृपा से मुझे पुत्र प्राप्त होना चाहिए, पर पुत्र भी सारे शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हो, उसके पास अक्षय ऐश्वर्य हो और धर्म पालक हो, धर्मज्ञ हो। केवल भोग विलास के लिए राज्य और संपत्ति नहीं चाहिए, धन का तो वास्तव में धर्म के अंदर व्यय ही शोभा बढ़ाने वाला होता है। इंद्र ने कहा कि तुम्हारी भावना बड़ी अच्छी है, इसलिए तुम्हारी भावना को लेकर सुनकर समझकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूरा होगा। राजा बड़े खुशी के साथ प्रजा के यहां अपने नगर में आ गए। फिर उन्होंने यज्ञ किए, धर्म का अनुष्ठान किया। इंद्र की कृपा से उसके एक पुत्र हुआ, उसका नाम बालाश्व रखा। पिता के मरने के बाद वो राज सिंहासन पर बैठा और उन्होंने संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लिया। कई राजा लोग ऐसे थे जो बड़े महापराक्रमी थे, सब प्रकार के साधन और धन से संपन्न थे, अतः उन सब ने मिलकर बालाश्व के ऊपर चढ़ाई कर दी, नगर को चारों तरफ से घेर लिया। राजा बालाश्व को बड़ा क्रोध हुआ, पर करें क्या, अब इधर प्रजा लड़ रही है, सेना लड़ रही है, पर सेना को खजाना चाहिए, खजाना कम हो गया, इसलिए सैनिक बल की कमी हो जाने से राजा बड़े दुखी हो गए। उन्हें कोई उपाय नहीं दिखाई दिया, तब वे आर्त होकर दोनों हाथ मुंह के आगे करके जोर जोर से सांस लेने लगे, ऐसे सांस लेने लगे। फिर तो उनके अंगुलियों के छिद्र से, ऐसा क्या ना, ये अंगुलियों के छिद्र से योद्धा रथ हाथी घोड़े निकले और थोड़ी देर में राजा का सारा नगर बहुत बड़ी सेना से भर गया। अब वो इतनी विशाल सेना जब नगर के बाहर गई, शत्रुओं को पराजित करने लगी, तो सब शत्रु कोई भाग खड़े हुए और कई वहां थे उनको अपने अधीन कर लिया। फिर राजा ने अपने हाथ को यूं रख करके और फूंक लगाई, यूं वो फूंक थी, मुंह की फूंक ये हाथ से घिसते हुए गई तो शत्रुओं को जलाने वाली सेना उत्पन्न हो गई। इसलिए इस बलाश्व का नाम करण धम कहने लगे। कर को धम धमन किया, धमन माने फूंकना। अब जितने राजा लोग थे वहां इकट्ठे हुए, संकट में पड़ गए तो हमको मारेगा, तब धर्म ने आकर के फिर किसी प्रकार से उसको उपदेश दिया और उन शत्रुओं के साथ में विराम करके उनके साथ मित्रता करवा दी। इसलिए मनुष्य को यह कभी नहीं समझना चाहिए कि मेरा, मैंने जो धर्म किया है उस धर्म से मुझे क्या लाभ हुआ। धर्म हमेशा मनुष्य के साथ रहता है। धर्मो रक्षति रक्षित है, रक्षित है धर्म रक्षित रक्षति, जो धर्म जिसकी हम रक्षा करते हैं वो रक्षित धर्म हमारी रक्षा करता है। फिर एक राजा थे, उनकी सुंदरी कन्या थी वीरा, जो बहुत श्रेष्ठ थी। उसने स्वयंवर में बलाश्व करंधम का वरण किया, उससे अवीक्षित नाम का पुत्र हुआ। इसका प्रसंग बड़ा विचित्र है। इसका विचित्र प्रसंग तो नाम रखने में आता है कि अवीक्षित नाम क्यों रखा। क्योंकि जब इसका इसका पुत्र का जन्म हुआ, मन अविक्षित का जन्म हुआ, तो राजा करंधम ने उसके ग्रह आदि के विषय में ज्योतिषियों से पूछा कि भाई इसका क्या भविष्य होगा। तब ज्योतिषियों ने कहा कि महाराज, आपका पुत्र उत्तम मुहूर्त में, श्रेष्ठ नक्षत्र में, शुभ लग्न में हुआ है, महान पराक्रमी होगा, परम सौभाग्यवान होगा, खूब शक्तिशाली होगा। बृहस्पति और शुक्र इसके सातवें स्थान में है, जो जन्म कुंडली बनाते हैं ना उसमें बारह स्थान होते हैं, यूं यूं फिर यूं 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 ऐसे बनाते हैं, तो बारह स्थान होते हैं। तो सातवें स्थान में बृहस्पति और शुक्र का स्थान है, बैठा है यहां, तथा चौथे स्थान में चंद्रमा है, इसके स्थान को देखते हैं। ग्यारहवें स्थान में बुध भी इसको देखते हैं। सूर्य मंगल और शनिश्चर इस पर दृष्टि नहीं डालते, अतः ये सब प्रकार की संपत्तियों से युक्त होगा। ज्योतिषियों की बात सुनकर राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। वो बोलते हैं कि अच्छा, बृहस्पति और बुध तो देखते हैं, सूर्य शनिश्चर और मंगल ये इसको नहीं देखते हैं, अविक्षित अविक्षित माने इनके द्वारा ये देखा नहीं जाता है, तो इसका नाम अविक्षित कर दिया। वीक्षा माने देखना और अविक्षित माने नहीं देखा हुआ, अदृष्टि, अविक्षित नाम हो गया। खूब अच्छी इसको शिक्षा दी गई, बड़ा पारंगत हो गया, बुद्धि में बृहस्पति के समान, रूप में अश्विनी कुमारों के समान, कांति में चंद्रमा, तेज में सूर्य, धैर्य में समुद्र और क्षमा में पृथ्वी के समान, वीरता में समानता रखने वाला कोई नहीं था। एक समय की बात है कि वैदिश के राजा विशाल की कन्या वैशालिनी को प्राप्त करने के लिए वहां बड़ा भारी स्वयंवर रचा गया, और उस स्वयंवर में उस सुंदरी के वरण की वरण करने के लिए अनेक राजा लोग इकट्ठे हुए। राजा अवीक्षित ने देखा कि इन राजाओं में कितना बल है, अतः उसने उस सुंदरी को स्वीकार कर लिया और अपने बल का और राजाओं के बल का ज्ञान करने के भाव से वह उसको ले जाने लगा और ललकारने लगा कि देखो, आप लोगों के बीच में मैं इस कन्या को अपने बल पौरुष से ले जा रहा हूं, आप में कोई हिम्मत है तो आओ ले जाओ। ऐसे सबको चुनौती दी। बड़े बड़े राजा लोग वहां इकट्ठे हुए थे, उन सबको बड़ा अपमान का अनुभव हुआ। वे कहने लगे कि देखो, अपने लोग क्षत्रिय हैं। क्षत्रिय का अर्थ यह होता है कि किसी भी प्रकार से धर्म की क्षति न हो। दुष्ट लोग यदि सताए जाते हों तो उनकी हम लोग रक्षा करें, सज्जन पुरुषों की रक्षा करें। अपने इतने राजाओं के सामने यह एक नारी का जबरदस्ती हरण कर रहा है और हम लोग उसकी चुनौती उनको सुन रहे हैं, ऐसे समय पर यदि हमें यदि हम उन्हें क्षमा कर दें तो ये तो धिक्कार की बात है। क्षमा वहां की जाती है जहां अपने में सामर्थ्य हो दंड देने की, फिर उसको दंड न दे तब वो क्षमा का सम्मान होता है। पर जहां हम डर करके कह दें कि हमने क्षमा कर दिया तो ये क्षमा नहीं है, ये भीरुता है। भीरुता माने डरपोकपना है, कायरता है। आओ, युद्ध में दो ही बात है, या तो हम इसको जीत लेंगे या ये हमको मार देगा। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो आज से अपने को क्षत्रिय कहना बंद कर देना चाहिए। संसार में कौन मनुष्य जो मृत्यु से नहीं डरता किंतु युद्ध न करके, और कौन सा मृत्यु से डर करके कभी अमर हो जाएगा? आओ क्षत्रियो, उठाओ अपने शस्त्र, आज अपना पुरुषार्थ अपने कर्तव्य के लिए जागरूक कर रहा है। सब राजाओं में जोश आ गया, क्रोध में भर गए, आपस में सलाह करके सब प्रकार के हथियार उठा लिए, कोई रथों पर कोई हाथियों पर, कितने ही राजा पैदल एक अकेले अवीक्षित से लड़ने के लिए आए। उनके विरोध में बहुत से राजा और राजकुमार, बड़ा संग्राम हुआ, तलवार शक्ति गदा धनुष बाण ये सब उस अकेले अवीक्षित पर प्रहार करने लगे और अवीक्षित ने सबके बाणों का संहार करना चालू कर दिया। किसी की भुजा काट दी, किसी की सिर, किसी की गर्दन काट दी, किसी की छाती छेद दी, किसी के वक्षस्थल में प्रहार किया। शत्रु को आते देख बाणों के कई टुकड़े कर देते थे, तलवार को आते देख तलवार को काट देते थे, किसी का धनुष तोड़ देते थे। कोई राजकुमार अपना कवच कट जाने के कारण भाग रहा था, भागते हुए को उसने नहीं मारा। कोई उसके बाणों से घायल होकर पैदल ही रणभूमि से भागा, उसको भी पीछे से नहीं मारा। इस प्रकार जब राजा की सारी कुंडली सारी मंडली व्याकुल हो गई, राजाओं की सारी मंडली व्याकुल हो गई, तब 700 वीर ऐसे छिपे हुए वहां पर बैठे थे कि वे एक साथ युद्ध के लिए आएंगे। अब वो एक साथ ही आ गए, वो 700 राजा एक साथ मिलकर के अवीक्षित से युद्ध करने लगे। अवीक्षित अत्यंत क्रोध में भर करके फिर युद्ध धर्म के नियम से लड़ने लगे। उन्होंने उन सब के हथियारों कवचों को काट दिया। ये अवीक्षित तो धर्मयुक्त युद्ध कर रहे थे, और ये जो 700 राजा लोग आए, उन्होंने देखा कि धर्म पूर्वक युद्ध करने से हम इसको जीत नहीं सकते हैं, तो वे धर्म से विमुख हो गए। विमुख होकर के अवीक्षित को घेर लिया और सब ओर से उन्हें हजारों बाणों से बींधने लगे। बहुतों के प्रहारों से बिचारे पीड़ित हो गए और अत्यंत व्याकुल हो गए, पृथ्वी पर गिर पड़े। अब उस अवस्था में उन सब ने मिलकर के धर्म पूर्वक उन्हें बांध लिया और राजा विशाल के साथ वे विदिष्ट नगर में प्रवेश करने लगे। जिसकी कन्या थी उसके घर में उसके वहां नगर में प्रवेश करने लगे। तदनंतर राजा करंधम को यह पता चला कि मेरा पुत्र है वो इस प्रकार से अनेक शत्रुओं से घायल हो गया है और उसको लोग ले जा रहे हैं। ये जब समाचार मिला तो करंधम को बड़ा क्रोध आया और अपने सेना को आदेश दिया कि आप लोग मेरे तक समाचार सुनाने क्यों आए हो? आपको तो सीधा ही सेना लेकर के उस पर चढ़ाई करनी चाहिए थी। वो जो दुष्ट विशाल है वहां आए हुए समस्त राजाओं को भी बांध लो और उस विशाल को भी बांध लो। तो जब वो सेना है, वो सेना वहां के लिए प्रस्थान कर गई। अब उसके बाद आगे की बड़ी कथा है।